आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है कि कई लोग भक्त बन जाते हैं और कई लोग भक्त नहीं बनते हैं और भक्त बनने के बाद भी नहीं बनते हैं, अर्थात भक्ति में आने के बाद भी प्रगति बहुत धीरे 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 से होती है। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार भक्त ये प्रश्न करते हैं कि हमें भक्ति में आने से इतना आनंद मिल रहा है, हमारे परिवार के सदस्यों को, हमारे मित्रों को हम बताने की चेष्टा करते हैं लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करते, मानने के लिए ही तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? तो ये प्रश्न अक्सर आता है। तो हमें याद रखना है कि हर एक जीव का इस भौतिक ब्रह्मांड में लंबा इतिहास है। अनादि काल से जीव इस भौतिक जगत में भ्रमण कर रहा है, 84 लाख योनियों में, कभी चींटी की योनि, कभी पक्षी की योनि, कभी पशु की योनि, कभी मनुष्य योनि, तो कभी देवी देवताओं की योनि, और ऊपर नीचे गोल 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 फिर रहा है जीव। अनादि काल से ये चल रहा है, किसी को याद नहीं कि कब से उसका इतिहास इस जगत में शुरू हुआ, हमारे समझ के, कल्पना के, याददाश्त के बाहर है ये। और ये इतिहास हर एक जीव के साथ में रहता है। ये जो इतिहास है इसके चित्त में, इसके मन में कोई संस्कार पैदा करते हैं, चिन्ह पैदा करते हैं, और इन चिन्हों की वजह से, संस्कार की वजह से कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग के प्रति आकृष्ट होते हैं और कोई व्यक्ति दूर ही रहते हैं भगवान के। इस माया जाल में फंसकर जीव जिस योनि को प्राप्त कर लेता है, जिस देह को प्राप्त कर लेता है, उसी देह को अपना सर्वस्व मानकर चलता है। अगर जीव को किसी कुत्ते का शरीर मिलता है तो अच्छे से, अच्छी तरह से भौंकने को प्रयत्न करता है और सोचता है कि अच्छी तरह से भौंकने से, अच्छी तरह से दांत दिखाने से मैं अच्छा कुत्ता बन जाऊंगा। जो मनुष्य शरीर में आता है व्यक्ति सोचता है मुझे अच्छे से, अच्छे ढंग से बोलना चाहिए, अच्छे से अच्छे पैसे कमाने चाहिए, अच्छा आराम ऐश करना चाहिए और ऐसा करने से मेरा जीवन सफल होगा। तो चाहे जीव कुत्ते के शरीर में भौंक रहा हो या जीव मनुष्य शरीर में आकर कोई भी मनुष्य भाषा में बोल रहा हो, जब तक वो भगवान के शरण में नहीं आता है बात तो वही है। दोनों पशु और मनुष्य दोनों ही माया के प्रभाव में हैं, दोनों अपने आप को शरीर समझ रहे हैं और फिर इस जीवन को अपना सब कुछ समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारा कोई नित्य शाश्वत कर्तव्य है और इस शाश्वत कर्तव्य को निभाने से हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन इस शाश्वत कर्तव्य को त्याग कर, इस शाश्वत आनंद को त्याग कर जीव नाना प्रकार के शरीर को प्राप्त करके इस क्षणिक सुख के पीछे भागता है, क्षणिक कर्तव्यों का पालन करने के पीछे भागता रहता है, इसीलिए वो हमेशा मोह में पड़ा रहता है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोपि मनुते नर्थम यत् कृतं चाभिपद्यते। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि इस तरह से जीव सम्मोह में पड़ जाता है, हालांकि वो आध्यात्मिक है, उसे ये भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी अपने आप को वो भौतिक जगत का एक अंश मानता है जबकि वो नहीं है। उसका स्थान है भगवान के धाम में, जीव का जगह है वैकुंठ लोक, लेकिन भगवान की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में आकर वो माया जाल में फंस गया है। और इस तरह से अनादि काल से वो काल के प्रवाह में बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। और जब तक जीव भगवान के शरण में नहीं आएगा, तब तक अनंत काल तक बहते रहेगा, बहते रहेगा। तो जीव का इतिहास ये संसार में क्या है? केवल यही है, काल के प्रवाह में बहते जाना। कुछ पता नहीं कि कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, हमें क्या करना है। कभी एक योनि, दूसरी योनि, दसवीं योनि, लाख नंबर की योनि, चलते रहा है, चलते रहा है, बस बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। कोई सोचता नहीं है कि वास्तव में इसका अंत कब होगा। इसलिए जब मुक्ति की बात की जाती है कि मनुष्य योनि में हमें चाहिए कि हम इस संसार के चक्र से छुटकारा पाएं, तो यह स्वाभाविक है कि प्रश्न ये आ सकता है मन में कि क्या यह हमारे लिए संभव है? इतना कठिन है ये मुक्ति प्राप्त करना? तो ये जो संदेह संशय है, ये कोई नया नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी अक्रूर जी दशम स्कंद में श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, तो वो भी कहते हैं, मम एव मम अधमस्य अपि स्याद एव अच्युत दर्शनम ह्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन। वो कहते हैं कि हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, मेरे मन में ये गलत धारणा थी कि मेरा कभी इस संसार से मुक्ति नहीं हो पाएगा, कभी भी आपका दर्शन में नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी गलत विचार थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इस काल नदी में बहते हुए जीव को कभी कभी किसी सौभाग्य से तट की प्राप्ति हो सकती है, क्वचित तरति कश्चन, वो इस भवसागर को कभी कभी पार भी कर सकता है। मतलब आशा है हमारे लिए, हमें निराश नहीं होना है। अक्रूर जी बता रहे हैं कि हालांकि इस भवसागर को पार करना बहुत कठिन है, फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझ जैसा अधम पापी व्यक्ति कैसे भगवान का दर्शन कर पाएगा, कैसे इस भवसागर को पार कर पाएगा। तो किस तरह से जीव इस संसार को पार करता है? ज्ञान प्राप्त करके, संग प्राप्त करके। जब जीव ये संसार में आ जाता है तो वो काल के प्रभाव में पड़ जाता है। ये काल एक सांप की तरह है, बड़े खतरनाक सांप की तरह, हमें एक बार पकड़ लेता है तो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। और जब कोई जीव काल के प्रभाव में आ जाता है तो काल का क्या परिणाम होता है? पहली बात तो उस जीव को एक भौतिक शरीर में जन्म लेना पड़ता है। जन्म के बाद उस शरीर का विकास होता है, फिर वो परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, फिर संतान की उत्पत्ति होने लगती है, फिर घटन होने लगता है और फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये भौतिक संसार में ये छह परिवर्तन के स्तर हैं। चाहे आप ब्रह्मांड को देखें, एक पेड़ को देखें, किसी पशु को देखें या किसी मनुष्य शरीर को देखें, काल का प्रभाव ऐसे चल रहा है ये भौतिक संसार में कि ये छह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति या जो जीव इस काल चक्र में पड़ा हुआ है, उसे भी ये छह परिवर्तन के स्तरों से गुजरना पड़ता है। तो अगर किसी को काल नदी से मुक्त होना है, इसका मतलब है कि उसे शाश्वत होना चाहिए, इन छह परिवर्तनों से परे हो जाना चाहिए। यही तो हमारे शास्त्र बताते हैं हमें, अमृतो मा सद्गमया अमृत गमया, कि अमृत अवस्था से अमृत अवस्था को हमें प्राप्त करना है। तो कैसे करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं कि किस तरह से जीव इस भौतिक संसार से मुक्त होता है। संसार भ्रमिते कोनो भाग्य के हो तरे नदीर प्रवाहे जैनो काष्ठ लागे तीरे। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझाते हैं कि अनादिकाल से बद्ध जीव इस संसार में भ्रमण करते आए हैं, कभी इस योनि में उस योनि में, और कहीं एक जीव को कोई सौभाग्य मिल जाए तो फिर क्या होता है, वो इस भौसागर को तैर के जा सकता है। नदीर प्रवाहे यन काष्ठला के तीरे, जिस तरह से नदी के प्रवाह में बहता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा कभी भी अकस्मात इत्तिफाक से संयोग से नदी के तट पे पहुंच जाता है और फिर जमीन पे आ जाता है भूमि पर, ठीक उसी तरह से इस काल के नदी में बहते हुए जो जीव हैं, उनमें से कोई एक भाग्यशाली जीव अकस्मात इस भौसागर के तट को पर पहुंच जाता है, अर्थात वो भौसागर को पार कर लेता है। तो ये भाग्य की बात बताई गई है, केवल एक भाग्यशाली जीव नदी के पार जा सकता है, भौसागर के पार जा सकता है। तो ऐसे भाग्यशाली जो जीव है उसके बारे में आगे जाके महाप्रभु वर्णन करते हैं। कौन भाग्य कारो संसार क्षयोन्मुख है, साधु संगे तब कृष्ण रति उपजाए। वो कहते हैं कि जब ऐसे किसी जीव को सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो संसार क्षय उन्मुख है, संसार में जो उसकी रहने की जो समय है वो कम हो जाता है, संसार का जो बंधन है वो क्षीण होने लगता है। और ऐसे जब संसार का बंधन क्षीण होने लगता है तो साधु संग उसे प्राप्त हो जाता है, और साधु संग प्राप्त होने के बाद में क्या होता है, कृष्ण रति उपजाए, भक्तों के संग में आकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत हो जाता है अपने मन में। तो इस तरह से जो भाग्यशाली जीव होता है उसी को सत्संग प्राप्त हो जाता है, और केवल उस व्यक्ति को जो जिसने सत्संग प्राप्त किया है उसे कृष्ण के प्रति आकर्षण हो जाता है, और वही एक व्यक्ति है जो इस संसार को पार करके भगवान के धाम में जा सकता है। अब यह प्रश्न आ सकता है कि वो किस तरह का भाग्य है जिससे किसी जीव को किसी व्यक्ति को सत्संग प्राप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि बेलगाम में या किसी भी शहर में कितने हजारों लाखों लोग होते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग सत्संग के लिए आते हैं, कितने लोग भगवान श्री कृष्ण की वाणी को का श्रवण करने के लिए आते हैं, या श्रवण करने के बाद में गंभीरता से भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, बहुत कम। क्यों? क्योंकि सभी लोग भाग्यशाली नहीं है। तो ये भाग्य किससे बनता है? शास्त्र में बताया जाता है कि दो प्रकार की चीजें भाग्यशाली हैं। एक तो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो तो वास्तव में भाग्यशाली है। और एक तरह के कार्य है जिसको भाग्यशाली कहते हैं शास्त्रों में, और वो है पुण्य, सुकृति। कृति मतलब कार्य, सुकृति मतलब अच्छे कार्य, दुष्कृति मतलब बुरे कार्य, पाप के कार्य। तो सुकृति या पुण्य ये भी एक भाग्यशाली कार्य बताया गया है। लेकिन पुण्य भी कई तरह के होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति समाज का कल्याण करना चाहता है और रास्ते में हर जगह पेड़ों के लिए बीज बो देता है, सोचता है कि पेड़ आएंगे, सबको छाया मिलेगी, फल मिलेंगे, पत्ते मिलेंगे। या कोई व्यक्ति जाता है अंधों के अस्पताल में जाता है, वहां दान करता है, गरीबों को दान करता है, दवाइयों का दान करता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति इस तरह का पुण्य करते हैं जो भौतिक स्तर में हैं, इसका फल उन्हें क्या मिलता है कि अगले जन्म में उनको भोग की सुविधा मिल जाती है। तो वो पुण्य कार्य जिनसे हमें भोग उपलब्ध होता है उसे भोगोन्मुख सुकृति कहते हैं। वो पुण्य जिससे हमें भोग की सुविधा प्राप्त हो जाती है। और एक प्रकार के पुण्य कार्य हैं जिसको करने से हमें भगवान के निराकार स्वरूप में लीन हो जाने की प्रवृत्ति हो जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। जैसे हम ज्ञानियों से संग करते हैं तो इसे मोक्षोन्मुख सुकृति कहते हैं। जिस सुकृति या पुण्य को करने से हमें भगवान के निराकार में लीन होने की प्रेरणा मिलती है वो मोक्षोन्मुख सुकृति है। तो ये भोगोन्मुख सुकृति और मोक्षोन्मुख सुकृति दोनों वास्तव में भाग्यशाली नहीं है। तो एक ही प्रकार का पुण्य कार्य भाग्यशाली है और वो कार्य है जिसको करने से हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण या प्रेम पैदा हो जाता है और इसको भक्ति उन्मुखी सुकृति कहते हैं। जिस सुकृति को जिस कार्य को करने से भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति एक लगाव पैदा हो जाता है, आकर्षण पैदा हो जाता है। तो वास्तव में यही भक्ति उन्मुखी सुकृति ही एकमात्र भाग्यशाली पुण्य कार्य है और उसके अलावा जो वास्तव में भक्ति कर ही रहे हैं वो तो अति भाग्यशाली है। तो इस तरह से ये भक्ति उन्मुख सुकृति है क्या? जैसे कभी कभी भक्त लोग बाहर जाते हैं, कीर्तन करते हैं, किसी ने जानबूझकर श्रद्धा भाव से या किसी ने गलती से भगवान का नाम सुन लिया तो उसकी सुकृति हो गई। कोई भक्त लोग जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद बांटते हैं जगह जगह, किसी ने एक कण ले लिया ये जानते हुए कि यह प्रसाद है, या कभी कभी ये न जानते हुए कि यह प्रसाद है, साधारण भोजन की तरह भी स्वीकार कर लिया तो उसकी सुकृति प्राप्त हो गई। इस तरह से जाने अनजाने में कोई भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग करे, जाने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे तो इसे सुकृति कहते हैं। जब ये भक्ति उन्मुखी सुकृति अज्ञात अवस्था में की जाती है न जानते हुए तो उसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। लेकिन जिस तरह से दवाई शरीर पर काम करती है, चाहे मरीज को पता हो या न हो कि यह दवाई है, ठीक उसी तरह से अगर हमने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की या उनके भक्तों का संग किया तो अवश्य हमें भक्ति में प्रगति होगी, चाहे हम इस बात को जाने या न जाने। तो ज्ञात सुकृति और अज्ञात सुकृति दोनों करने से धीरे 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 हम भक्ति मार्ग में प्रगति करते हैं और फिर हमें भक्तों के संग में आने का एक अवसर मिलता है। येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते मोहद्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जिस व्यक्ति के पाप क्षीण हो गए हैं और जिसने पर्याप्त मात्रा में सुकृति या पुण्य कार्य किए हैं, केवल वही व्यक्ति दृढ़ता से मेरा भजन, मेरी भक्ति कर सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति भक्तों के संग में भी आता है, मंदिर में भी आता है, तो हमें समझना चाहिए कि जब तक उसके सुकृति पर्याप्त मात्रा के न हो, जब तक उसके पाप पर्याप्त मात्रा से क्षीण न हुए हो, तब तक वो दृढ़ता से भक्ति नहीं कर सकेगा। तो देखिए कितनी सुंदर बात है। तो कौन है वो व्यक्ति जो भक्तों का संग प्राप्त कर सकता है? जिसने भक्ति उन्मुखी सुकृति की हो पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी, केवल वही व्यक्ति भक्तों का संग प्राप्त कर सकता है। अकस्मात अचानक रास्ते में किसी भक्त को मिल गया 20 साल के बाद, अरे तुम कृष्ण भक्त बन गए, तुम तो पहले कैसे थे अभी कैसे हो गए, 2 मिनट बात की भक्त से, कृष्ण का नाम लिया, उस व्यक्ति भक्त ने कृष्ण के बारे में 2 बातें बताई, कुछ सुन लिया, भक्ति उन्मुखी सुकृति हो गई, भक्ति मार्ग उसका शुरू हो गया। इस तरह से व्यक्ति किसी न किसी तरह से भक्तों के संग में आता है क्योंकि उसकी पहले से थोड़ी बहुत सुकृति थी। लेकिन भक्तों के संग में आने के बाद भी अगर उसका स्टॉक, उसकी पूंजी जो है सुकृति की, अधिक नहीं रही, पर्याप्त नहीं रही, तो वो दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पाएगा, आएगा जाएगा, इस तरह से वो दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन भक्ति से दूर हमेशा के लिए नहीं जा सकता है क्योंकि हमारे जो पाप हैं वो कभी भी हमें भगवान से हमेशा दूर नहीं रख सकते। जिस तरह से समुद्र में फेण आते हैं और चले जाते हैं, लहरें आती हैं चले जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस भवसागर में भी हर जीव जो कि तैर रहा होता है वो कभी पाप करता है कभी पुण्य करता है, कभी पाप कभी पुण्य। तो ये पाप और पुण्य के फल जो है ये भी उस फेण की तरह, बुदबुदे की तरह बाहर आते हैं खत्म हो जाते हैं, फिर से बाहर आते हैं खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आते हैं और जाते हैं। जब हमारे पाप फल प्रदान करते हैं तो हमें दुख मिलता है, जब हमारे पुण्य फल प्रदान करते हैं तो हमें तथाकथित सुख मिलता है। लेकिन जब उस दुख को या सुख को हम भोग लेते हैं तो वो पाप या वो पुण्य क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन हमने और पाप और पुण्य किए हुए होते हैं इसलिए अभी उनको भोगना पड़ता है। और इस तरह से ये चक्र चलता है, पाप और पुण्य करते रहना और फिर उनका फल भोगते रहना, ये जीव का इतिहास है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति उन्मुखी सुकृति करता है, किसी न किसी तरह से एक भक्त के संग में आता है, तब उसकी भक्ति वास्तव में शुरुआत हो जाती है और उस समय उसके जीवन में एक मोड़ आ जाता है। ये मोड़ बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, टर्निंग पॉइंट। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं गाड़ी में, हमें कहीं जाना होता है बाईं तरफ मोड़ लेना होता है, भूल जाते हैं आगे गलत रास्ते कहीं और चले जाते हैं, दूसरा मोड़ ले लेते हैं। तो ये जो भक्ति का मोड़ है ये सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है हमारे जीवन में। इस जीवन में तो क्या, जीव के सारे ब्रह्मांड के इतिहास में ऐसे मोड़ प्राप्त करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम कितने सारे उदाहरण देखते हैं कि भौतिक जीवन में भी लोगों के मोड़ आते हैं जीवन में। जैसे मान लो कोई कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो में जाता है और सारे प्रश्नों का उत्तर देके करोड़पति बन जाता है और सोचता है कि ऐसा मोड़ मेरे जीवन में आया, मैं तो धनी हो गया, धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, मनुष्य जीवन के चरम सीमा तक को मैंने प्राप्त कर लिया है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए। और कोई व्यक्ति, जैसे अभी कच्छ में कितनी भयंकर दुर्घटना हुई, भूकंप हुआ, कितने लोग थे जो बहुत अमीर थे जो बिल्कुल सड़क पे आ गए, जो रंक है वो राजा के समान करोड़पति बन गया और जो इतने राजा के समान थे करोड़पति थे वो सड़क पे रस्ते पर आ गए। इतना भयंकर मोड़ कभी जीवन में आ जाता है अकस्मात, कोई नोटिस नहीं था कि ऐसा भूकंप आने वाला है। तो ऐसे जो मोड़ आते हैं, कोई व्यक्ति करोड़पति बनता है और कोई करोड़पति होने के बाद में रास्ते पर चले आता है, ये जो मोड़ है जीवन में केवल समुद्र में फेण की तरह है। आज कोई बन गया किसका कल नुकसान हो गया, कल फिर से कोई बन जाएगा फिर से उसका नुकसान हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं है। जीव अनादि काल से संसार में चलते आ रहा है अलग अलग योनियों में, कितने ऐसे मोड़, हर घड़ी पे उसे ऐसे मोड़ का अनुभव करना पड़ रहा है। तो जो बद्ध जीव है अज्ञान अवस्था में ऐसे मोड़ों को बहुत महत्वपूर्ण समझता है, जो करोड़पति बन गया है इसको बहुत बड़ी बात समझता है और जो करोड़पति से रास्ते में आ गया है वो भी समझता है कि कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी भयंकर दुर्घटना हो गई। लेकिन जो अपने आप को आत्मा जान लेता है वो ऐसे घटनाओं से, अच्छे या बुरे घटनाओं से संबंध नहीं रखता। हम देखते हैं कितने ही उदाहरण शास्त्रों में या इतिहास में हैं, जहां किसी पापी या भोगी ने भी अगर किसी भक्त का संग किया हो तो उसका किस तरह से कल्याण हो जाता है, किस तरह का मोड़ उसके जीवन में आ जाता है। एक बार एक डाकू थे जिनका नाम था रत्नाकर, और ये रत्नाकर इतना पापी था, हर तरह के पाप करता था, जंगल में डाका लगाता था, हर जगह चोरी खून खराबा सब कुछ करता था। और एक बार नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे तो नारद मुनि के ऊपर आक्रमण करने ही वाला था ये रत्नाकर, जब उसने देखा कि ये तो साधु है, साधु के ऊपर क्या आक्रमण करेंगे, तो नारद मुनि ने देखा इस डाकू को और कहा कि अरे तुम ऐसे नीच कार्य क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि ये बड़ा पाप है खून करना, चोरी करना, आक्रमण करना, तुम किस लिए कर रहे हो ये सब, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा इस कार्य के फलस्वरूप। तो रत्नाकर ने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम पाप क्या है पुण्य क्या है, बस मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए मैं ऐसे कार्य कर रहा हूं। तो नारद मुनि ने पूछा कि जिन व्यक्तियों के लिए तुम ऐसे पाप कार्य कर रहे हो उनको जाके पूछो कि जो पाप का जो फल मिल रहा है, अभी जो धन वगैरह मिल रहा है जिसका भोग ये कर रहे हैं, तो इसका भोगने से उनको जो नरक में जाना होगा उसमें भी भागीदार होना होगा, क्या वो उसके लिए तैयार हैं? तो रत्नाकर ने कहा ठीक है मैं जाके पूछ के आता हूं। तो रत्नाकर ने अपने पत्नी से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए ये सब पाप कर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ नरक लोक में जाओगे इस जीवन के बाद में? पत्नी ने कहा नहीं, मैं जाने के लिए तैयार नहीं। फिर रत्नाकर ने अपने माता पिता से पूछा, मैं आप दोनों के लिए ही तो ये सब कर रहा हूं, आपका पेट भरने के लिए, तो मुझे ये बताया गया है, एक साधु ने बताया है कि ऐसे पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है, और जो धन मैं इस पाप की वजह से कमा रहा हूं इसको आप भोग रहे हो, इसलिए आपको भी नरक में आना चाहिए मेरे साथ में, आप तैयार हैं? तो माता पिता ने कहा नहीं, नरक में हम नहीं आएंगे। रत्नाकर ने इसी तरह से अपने बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी कहा नहीं, हम भी नरक में आने के लिए तैयार नहीं है। तो रत्नाकर सोचने लगा कि अरे मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूं, इनके लिए मैं इतना पाप कर रहा हूं, लेकिन नरक जाना हो तो अकेला मुझे जाना पड़ेगा, ये लोग भोग करेंगे आराम करेंगे और नरक में अकेले जाऊंगा। तो फिर से नारद मुनि के पास आए और नारद मुनि ने कैसे कहने लगे, अब आप मुझे आदेश दीजिए, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नरक में नहीं जाना है। तो फिर नारद मुनि ने उनको बताया कि देखो तुम भगवान का नाम ले लो, राम 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 कहो, ये कथा आप सब जानते हैं। तो रत्नाकर इतने पापी थे कि राम का नाम का उच्चारण भी नहीं हो रहा था, इसलिए जिनकी पाप की पूंजी बहुत अधिक है उनके मुंह से राम का नाम नहीं निकल सकता है। तो कोशिश कर रहा था लेकिन निकल ही नहीं रहा था मुंह से। तो फिर नारद मुनि प्रचारक हैं, बड़े चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, जानते हैं कि किस तरह से हर एक तरह के लोगों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो वो जानते थे कि हर रोज रत्नाकर जब किसी का खून करते थे तो बोलते थे ये मर गया, तो ऐसे मरा मरा बोलते थे, ये मर गया, ये मरा, वो मरा। तो नारद मुनि कहने लगे तुम तो रोज बोलते हो ये मरा वो मरा, तुम मरा मरा बोलते रहो। तो फिर रत्नाकर कहने लगे मरा 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 राम 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 बोलने लगे, और उस अवस्था में खड़े रहे, उनके इर्द गिर्द एक वाल्मीकि चीटियों का पहाड़ हो गया और इसलिए उनका नाम बाद में हो गया वाल्मीकि। तो देखिए एक भक्त के संग करने से कैसा मोड़ आ गया वाल्मीकि के जीवन में, रत्नाकर के जीवन में, इस मोड़ में और करोड़पति बनने के मोड़ में बहुत अंतर है। ये मोड़ में आते रहते हैं, टेढ़े मोड़ आते हैं, कभी ऐसे कभी वैसा, लेकिन ये जो मोड़ आया रत्नाकर के जीवन में एक ऐसा मोड़ था जिस रास्ते में मोड़ने से फिर वो हमेशा के लिए आगे चलता गया और भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। उधर चैतन्य चरितामृत में कथा आती है एक ऐसे ही भयंकर शिकारी की, पापी की, जिसका नाम था मृगारी, मृग अरी, अरी मतलब शत्रु, ये सारे पशुओं का शत्रु था, बड़ा क्रूर व्यक्ति था, और वो केवल पशुओं की हत्या ही नहीं करता था बल्कि पहले उनको इस तरह से तीर मारता था कि वो आधे मरे हुए पड़े और इस तरह से उछालते तड़पते हुए मरे, ऐसे क्रूरता से वो मार डालता था सारे पशुओं को। तो नारद मुनि एक बार उस जंगल से गुजर रहे थे, तो गुजरते समय उन्होंने देखा कि यहां पर एक पशु तड़प तड़प के मर रहा है, कोई तीर है इसके शरीर में, और आगे चल के देखा एक पक्षी है, इस तरह से जगह जगह पर ऐसे पक्षी और पशु पड़े हुए थे। नारद मुनि को बड़ा दुख हुआ। और भी जब अंदर गए जंगल में तो अचानक एक बहुत ही क्रूर लाल आंखों वाला आदमी सामने आ गया और क्रोधित होकर कहने लगा कि मैं शिकार के लिए तैयार था, तीर छोड़ने ही वाला था, लेकिन आप यहां पर आए, आपके पैरों की आवाज से वो पशु जो मेरा शिकार था वो भाग गया, अब मेरा खाना आज का नहीं मिलेगा। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम इतना पाप करते हो, अगर तुम्हें मारना ही है तुम इनको पूरा एक समय क्यों नहीं मार देते, तड़पा तड़पा के क्यों मारते हो इन पशुओं को। और इस तरह से नारद मुनि उपदेश करने लगे उस मृगारी को और बताने लगे कि पाप करने का परिणाम क्या होता है, कि आदमी को नरक में जाना पड़ता है, और नरक में जाने से क्या होता है, नरक में क्या दिशा होती है। नारद मुनि ने उनको दिखलाया कि देखो नरक में ऐसे ऐसे दंड मिलते हैं, भयंकर दंड। तो मृगारी ने जब ये सुन लिया तो बहुत घबरा गया, अरे मुझे ऐसे दंड मिलेगा नरक लोक में जाके, तो मुझे क्या करना होगा। तो नारद मुनि ने बताया आज से पशुओं की हत्या करना या किसी की भी हत्या करना बंद कर दो, तुम्हारा धनुष बाण छोड़ दो, नीचे फेंक दो इसे। तो मृगारी कहने लगा कि मुझे तो इसके अलावा और कोई आमदनी का तरीका नहीं है, जो मेरे पिताजी ने दादा ने परदादा ने किया है वही धंधा मैं चला रहा हूं, अभी वो धंधा मैं बंद कर दूंगा तो पेट को पे कैसे भरूंगा मैं। तो नारद मुनि कहने लगे चिंता नहीं करो, तुम्हारे पेट का देखभाल मैं कर लूंगा, तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करो और यहां पे ये बाण छोड़कर मेरे साथ में आओ, एक सभ्य स्वरूप धारण करो, स्नान कर लो, अपने बाल काट लो, स्वच्छ वस्त्र पहन लो, यहां तुलसी जी के तुलसी महारानी के सामने बैठो, तुलसी जी की सेवा करो और भगवान श्री हरि के नाम का निरंतर जाप करते रहो और देखो तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। तो फिर श्रद्धा रखी मृगारी ने नारद मुनि के वचन पर और ऐसे ही किया और नारद मुनि वहां से चले गए। और ऐसे हुआ कि जब आसपास के जो लोग थे उन्होंने सुना और देखा कि मृगारी जैसे भयंकर शिकारी और क्रूर व्यक्ति एक वैष्णव बन गया है, भगवान का भक्त बन गया है, तो वो इतने प्रभावित हुए कि सब लोग उसका दर्शन करने आए थे और कोई न कोई कुछ न कुछ उसे अनाज फल फूल सब्जी कुछ न कुछ दे के चले जाता। इस तरह से मृगारी को इतना अनाज उसके साथ में आ गया एक पूरे गांव को खिलाने के लिए, था अकेला कितना खा सकता है एक आदमी। तो मृगारी को अपने गुरु महाराज के वचनों में श्रद्धा आ गई कि हाँ मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि केवल मैं अगर तुलसी महारानी की सेवा करूंगा और हरि नाम का जाप करूंगा और पाप को त्याग करूंगा तो मेरी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। वास्तव में भगवत गीता में भी यही भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां मिथ्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, नित्य मेरी उपासना करता है, आराधना करता है, उसके सारे जो भी चीज आवश्यक है वो उसको मैं पूरा कर देता हूं और जो चीजें उसके पास हैं उनका संरक्षण करता हूं। तो इस तरह से अच्छा सा वैष्णव, अच्छे से वैष्णव बन गए मृगारी। और थोड़े दिन बाद नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ में वहां से गुजर रहे थे और बहुत दूर से उन्होंने देखा कि पर्वत मुनि और नारद मुनि आ रहे हैं, तो बड़ा आनंद हुआ उनको और तुरंत दंडवत डालने का प्रयास करने लगे। लेकिन ठीक उस समय उन्होंने देखा कि सड़क पर थोड़ी चींटियां हैं, तो तुरंत अपने आप को रोक लिया मृगारी ने और फिर अपने कपड़े से हल्के से उस चींटियों को दूर करने लगे। जब पर्वत मुनि ने यह देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि हे नारद जी, देखिए आप जैसे भक्त जो चिंतामणि हैं, आपका किस तरह का प्रभाव पड़ जाता है लोगों के ऊपर। मृगारी जैसे पापी दुष्ट व्यक्ति भी आज इतना एक दयालु वैष्णव बन गया है कि चींटी की भी हत्या नहीं करना चाहता है। ये वास्तव में बड़ी अद्भुत बात है। तो इस तरह से मृगारी के जीवन में भी ऐसे एक मोड़ आ गया, और एक बार ये मोड़ आ गया तो मृगारी ने कभी पीछे नहीं देखा, आगे भगवान के धाम की ओर उनका मार्ग चलता गया। उसी तरह से हरिदास ठाकुर, उन्होंने भी एक वेश्या के जीवन में ऐसे मोड़ लाया। रामचंद्र खान नाम के एक आदमी थे जो हरिदास ठाकुर से ईर्ष्या करते थे और हरिदास ठाकुर को बदनाम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस वेश्या को उधर भेजा हरिदास ठाकुर के पास में, और वो वेश्या भी इसी उद्देश्य से गई कि हरिदास ठाकुर को बदनाम किया जाए। लेकिन हरिदास ठाकुर के सानिध्य में बैठी वो, और हरिदास ठाकुर जाप करते रहे, कहा कि मेरा जाप पूरा नहीं हुआ, तुम यहां बैठो। तो 3 दिन लगातार ऐसे जब हुआ तो वेश्या का चित्त पूरी तरह से बदल गया, शुद्ध हो गया, और वो भी वैष्णव बन गई। और हरिदास ठाकुर ने कहा उस वेश्या से कि अब तुम भी वैष्णवी बन गए हो, इसलिए इस कुटिया में तुम रहना, मैं यहां से चले जाता हूं। वास्तव में मुझे मालूम था तुम किस लिए आई हो और किसने तुम्हें भेजा है। मेरी इच्छा थी कि मैं उसी समय चले जाऊं, लेकिन तुम्हारे उद्धार करने के लिए मैं यहां 3 दिन और रुक गया, इसलिए तुम यहां पर रहो, तुलसी महारानी की सेवा करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर करते रहो और अपने पाप कार्य को त्याग दो। इस तरह से तुम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर पाओगी। और उस वेश्या ने ऐसे ही किया और वो बड़ी वैष्णवी बन गई, और जगह जगह से लोग उनका दर्शन करने आ जाते थे। इस तरह से ये 3 उदाहरण से हम देखते हैं कि भक्त का संग करने से किस तरह का मोड़ जीवन में आ जाता है, और यही एकमात्र मोड़ है जो हमें सही मार्ग में ले जाता है और जो शाश्वत जिसका परिणाम है। अन्य सारे जो भी मोड़ जीवन में आते हैं, इस तरफ उस तरफ ले जाते हैं, लेकिन वास्तव में तो केवल जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें अटका के रख देते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक है जो कि राजा मुचुकुंद श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बोलते हैं श्री कृष्ण के प्रति, और ये श्लोक यहां पर लिखा हुआ है, तो आज हम ये श्लोक को पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज जनस्य तरच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रतिः। हे प्रभु, हे अच्युत, हे विश्व के स्वामी, जब कोई व्यक्ति, कोई जीव जो कि इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनादि काल से भ्रमण करने के बाद इस भौतिक सृष्टि से मुक्ति प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, तो उसे आपके भक्तों का संग करने का अवसर मिल जाता है, और जब वो आपके भक्तों से संग करता है तो आपके प्रति उसके हृदय में आकर्षण जागृत हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हम नाना प्रकार के सुकृति करते हैं, भक्ति उन्मुख सुकृति, फिर हम मुक्ति के लिए तैयार हो जाते हैं। मुक्ति के लिए योग्य नहीं हो जाते, लेकिन केवल तैयारी है। अब मुक्ति वास्तव में प्राप्त करने के लिए भक्तों का संग चाहिए। तो जिस तरह से किसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है, और परीक्षा देने के में पास होने के बाद में व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो सकता है, लेकिन उस परीक्षा को पास करने के बाद में वो डॉक्टर नहीं बन जाता। अभी उसे और पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद फिर जब परीक्षा में पास हो जाएगा फिर आगे चल के डॉक्टर बनेगा। ठीक उसी तरह से जब हमारे भक्ति उन्मुखी सुकृति की पूंजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है तो भक्तों के संग के लिए हम योग्य हो जाते हैं। लेकिन भक्तों के संग में आने के बाद में हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। भक्तों के संग में आने से स्वाभाविक तौर से हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत होता है, क्योंकि भक्तों के संग में कृष्ण कथा ही चलता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि जब हम श्री कृष्ण के भक्तों के संग में आते हैं और श्री कृष्ण के बारे में सदा सुनते हैं, यस्यम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष श्री कृष्ण के बारे में सुनने से भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, व्यक्ति के हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। और ऐसे भक्ति जागृत होने के फलस्वरूप जो भी हमारे चित्त में शोक है, भय है, मोह है, वो सब नष्ट हो जाता है। तो ये है भक्तों के संग का प्रभाव। भक्तों के संग में आने के पहले हम नाना प्रकार के गलत धारणाओं लेकर घूमते हैं। मैं उद्योगपति हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं सो रहा हूं। ये प्रश्न तो अभी सबको करना चाहिए, लेकिन ये सब हमारे शरीर से संबंधित है, हमारे आत्मा से नहीं। वास्तव में आत्मा तो केवल कृष्ण का दास है। एक बार बहुत साल पहले एक राजा थे जिनका नाम था महाराज रहुगण। महाराज रहुगण पालकी पे सवार होकर जा रहे थे कहीं, सिंधु सौवीर के राजा थे वो। तो एक बार उनके जो पालकी उठाने वाला जो एक आदमी था वो बीमार पड़ गया, तो और जो सेवक थे वो किसी एक आदमी के लिए ढूंढ रहे थे जो कि एक योग्य व्यक्ति रहे उस पालकी को उठाने के लिए। तो ढूंढते ढूंढते ये सेवक इधर उधर जा रहे थे तो अचानक उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि नवयुवक था, बड़ा सुंदर था दिखने में और हट्टा खट्टा भी था शरीर से। और वो कौन था? उसका नाम था जड़ भरत। वास्तव में इसके पहले जन्म में यह व्यक्ति एक हिरण था और उस हिरण के जन्म के पहले यह व्यक्ति भारतवर्ष का राजा राजा भरत था। राजा भरत के बाद में यह नाम इस देश का रखा गया है भारतवर्ष। तो खैर जड़ भरत वास्तव में आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे, लेकिन वो डर रहे थे कि मुझे माया में नहीं पड़ना चाहिए। राजा भरत के शरीर में जब मैं था तो एक हिरण से आसक्त होकर मेरा पतन हो गया, इसलिए मुझे हिरण का शरीर लेना पड़ा और इस जन्म में मैं ऐसा कोई खतरा नहीं लूंगा, मैं माया से दूर रहूंगा, इसलिए मैं सब समाज के सामने एक मूर्ख का स्वरूप धारण करके मैं रहूंगा। तो सारे लोगों ने सोचा कि यह मूर्ख है, लेकिन शरीर से बड़ा हृष्ट पुष्ट था, इसलिए उन सेवकों ने जड़ भरत को लिया और पालकी उठालने के लिए आदेश दिया। तो जड़ भरत बड़े नम्र थे, भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त थे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपके आदेश। तो चार लोग पालकी पर चल रहे थे, उठाकर चल रहे थे तो अचानक जड़ भरत ने देखा कि रास्ते में कोई चींटियां हैं, तो तुरंत वो रुक गए। और जैसे ही रुक गए तो बाकी तीन लोग चल रहे थे और ये अकेले रुक गए, इसलिए एक झटका लग गया पालकी को और महाराज रहुगण प्राय पालकी से बाहर गिर पड़े। तो उनको बड़ा क्रोध आया, ऐसे एक बार दो बार हो गया। और जब महाराज रहुगण ने अपने पालकी उठाने वाले सेवकों से कहा कि देखो ऐसे मत करो दंड दूंगा मैं, तो उससे घबरा गए और कहने लगे कि महाराज, हमारी कोई गलती नहीं, हम तो अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया आदमी है ये बार बार ब्रेक डाल देता है, इसलिए अचानक पालकी जो है वो पलट जाती है।